अभिमन्यु वापस घर आ गया था। उसे सही सलामत देखकर पूरा राजवंश परिवार बहुत खुश था। अभिमन्यु के कंधे पर जो चोट लगी थी उसके बारे में अभिमन्यु ने सिर्फ इशिका को बताया था। फिर से ड्रेसिंग कराने के बाद अभिमन्यु इशिका के साथ राजवंश परिवार के पास जा रहा था। अभिमन्यु ने दिशांग के साथ मिलकर इशिका की कंपनी को पब्लिक करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो इस खुशखबरी को बताने मेन विला में जा रहे थे। अभिमन्यु और इशिका वसुधा के विला से बाहर निकले ही थे कि उन्हें सामने अंजलि दिखाई दे गई। अंजलि भी अभिमन्यु से बात करने के लिए आ रही थी। वो पार्थ की सच्चाई अभिमन्यु और इशिका को बताना चाहती थी। अंजलि को देखते ही अभिमन्यु का मूड खराब हो गया था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में इशिका से कहा, ऐसा करते हैं कि ये न्यूज़ बाद में घर वालों को बता देंगे, चलो वापस दादी के विला में चलते हैं, हम अपने पुराने बेडरूम में ही सो जाएंगे। इशिका अभिमन्यु की तकलीफ समझ सकती थी। उसकी जगह कोई और भी होता तब वो भी अंजलि के साथ ऐसा ही बर्ताव करता। अभिमन्यु अपने गुस्से में वापस जाने के लिए बढ़ रहा था तभी अंजलि ने पीछे से तेज आवाज में कहा, क्या आप एक बार बात भी नहीं करना चाहोगे? अभिमन्यु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। अभिमन्यु ने बिना पलटे जवाब में कहा, नहीं। कुछ जरूरी बात है, अंजलि भारी आवाज में बोली। फिर भी नहीं, अभिमन्यु ने एक बार फिर बात करने से इनकार कर दिया था। अंजलि ने गहरी सांस ली और एक बार फिर उसी उम्मीद से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती हूँ। पिछली बार भी तुमसे मिली थी तो तुम्हें खतरे से आगाह करना चाहती थी, अभी भी इसी वजह से बात करने आई हूँ, एक बार मेरी बात सुन तो लो। इशिका ने अंजलि के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसने कभी अभिमन्यु को ना अपनाया हो लेकिन अंजलि के अंदर कोई छलकपट नहीं था। जो उसके दिल में था वही वो अपनी जबान पर रखती थी, फिर चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा। इशिका ने अंजलि का पक्ष लेते हुए अभिमन्यु से कहा, तुम्हें एक बार उनकी बात सुन लेनी चाहिए। इशिका के कहने पर अभिमन्यु अंजलि की तरफ पलटा और झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, जो भी कहना है जल्दी कहिए, आपकी बात सुन रहा हूँ तो सिर्फ इशिका की वजह से, क्योंकि आज तक मैंने कभी इसे किसी बात के लिए मना नहीं किया है। अभिमन्यु की बातों से ही अंजलि अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसकी ज़िंदगी में इशिका की क्या अहमियत थी या वो किस हद तक इशिका से प्यार करता था। वहीं अभिमन्यु की बात सुन इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। इशिका ने अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे अंगूठे से सहला कर कहा, मैं वहां दूसरी तरफ हूँ, आप लोग अपनी बात कीजिए। इशिका उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। अभिमन्यु में उसकी बात में हामी भरी। वो भी नहीं चाहता था कि अंजलि की बातें सुनकर इशिका प्रेगनेंसी में स्ट्रेस ले। लेकिन अंजलि के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वो चाहती थी कि उनकी बातचीत के दौरान इशिका वहां पर मौजूद रहे ताकि अगर अभिमन्यु गुस्से में आपा खो दे तो वो उसे संभाल सके। अंजलि ने इशिका को रोकते हुए कहा, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, वैसे भी बाद में ये तुम्हें सब कुछ बताने वाला ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम हमारे बीच इस बातचीत में शामिल रहो। इशिका ने कुछ भी कहने से पहले अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इशिका हमारी बातचीत के दौरान यहाँ पर रहे, तुम जाओ और अंदर आराम करो, मैं इनसे निपट लूंगा। अभिमन्यु ने इशिका को अंदर भेज दिया था। उसके जाते ही अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के अंजलि की तरफ देखा और बोला, बोलिए, अब कौन से खतरे से आगाह करने के लिए आप मेरे पास आई हैं? मुझे समझ नहीं आता कि मेरे ऊपर आने वाली परेशानियों के बारे में पहले आपको कैसे पता चल जाता है, जबकि हमारे बीच तो कोई रिश्ता भी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे ही ताने मारने हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अंजलि हल्के गुस्से में बोली। वो जब से अभिमन्यु से मिली थी अभिमन्यु उसे किसी न किसी बात को लेकर सुनाई ही जा रहा था। अंजलि को लगा अभिमन्यु उससे सामान्य बात करेगा, इसके बजाय अभिमन्यु ने उसे आगे जाने के लिए रास्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अंजलि उससे बात करती है या नहीं। अभिमन्यु के रूखे बर्ताव के आगे अंजलि ने हार मान ली थी। हालांकि उसे अभिमन्यु पर गुस्सा बहुत आ रहा था, पर वो क्या करती, अभिमन्यु बिल्कुल उसकी तरह ही था। अंजलि ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोली, तुम उस औरत के बेटे पर भरोसा कर भी सकते हो? आप किसकी बात कर रही हैं? अभिमन्यु ने हैरानी से सिर हिलाकर पूछा। मैं पार्थ रायचंद की बात कर रही हूँ, जो सुनैना रायचंद का बेटा है, अंजलि ने जवाब दिया। और आप उसे कैसे जानती हैं? आपको किसने कह दिया कि मैं उस पर यकीन कर रहा हूँ? अभिमन्यु बोला। वो बहुत नपेतुले शब्दों में जवाब दे रहा था। जाहिर सी बात है, तुमने प्रशांत और नकुल की पूरी परिवार को यहाँ से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी पार्थ यहाँ रह रहा है, तो तुम्हें उस पर यकीन होगा, है ना? वो भरोसा करने लायक नहीं है, अंजलि ने उसे समझाते हुए कहा। भरोसा करने के लायक तो आप भी नहीं हैं, फिर भी आपके पास खड़ा आपकी बातें सुन रहा हूँ ना मैं। रही बात पार्थ रायचंद की, तो इस घर में उसका हिस्सा है, उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके बाद मैं उसे घर से निकाल दूँ। बाकी लोगों की तरह वो भी यहाँ पर रह रहा है, मुझे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह जैसे आपके होने से नहीं पड़ता मिस चौहान, अभिमन्यु ने कड़वाहट से जवाब दिया। मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकती हूँ, मैंने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें उसके लिए कोई सफाई दे भी नहीं रही हूँ। तुम मुझसे नफरत करते हो तो उसकी वजह जायज है, पर पार्थ पर भी यकीन मत करो, वो यहाँ तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया है, उसने खुद मुझे बताया था। अंजलि ने अभिमन्यु को अपनी और पार्थ की पूरी बातचीत के बारे में बता दिया था। अभिमन्यु जानता था कि अंजलि झूठ नहीं बोल रही है, फिर भी उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे अंजलि की बातों से कोई असर नहीं हो रहा हो। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आपने कह दिया और मैंने सुन लिया, बात यहीं खत्म हो गई। उम्मीद है कल तक ये कर्फ्यू हट जाएगा और आप यहाँ से चली जाएंगी, या अगर नहीं भी जाएं तो प्लीज मेरे सामने मत आइएगा। अभिमन्यु ने काफी बेरुखी से कहा और फिर वहां से वापस इशिका के पास जाने लगा। अंजलि नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। गलती उसी की थी जो उसने अभिमन्यु को अपनी नफरत के चलते छोड़ दिया था। अभिमन्यु ने अंजलि की बात नहीं सुनी तो वो गुस्से में वापस अपने कमरे में आ गई थी। ये लड़का मुझसे इतना रूठ कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने जो किया वो गलत था, पर आज तो मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, है ना? मेरी बात तक नहीं सुन रहा है, आंखों में नहीं देख रहा है, सामने नहीं रहना चाहता, अकेले इसी को तकलीफ हो रही है क्या? अच्छे से जानता है इसके उस बाप ने मेरे साथ क्या किया था, उसके साथ भी रहता ही था ना, फिर मुझसे क्या परेशानी है इसे? कमरे में आकर अंजलि गुस्से में बड़बड़ाते हुए खुद से बातें कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंजलि अभिमन्यु के बर्ताव पर गुस्सा निकाल रही थी तभी उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो वो उसकी बहन नैना का कॉल था। अंजलि ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से नैना ने उसकी परवाह जताते हुए काफी नरम लहजे में कहा, अंजलि मुझे पता चला है तुम गोवा गई हुई हो, इस वक्त राजवंश विला में हो, क्या ये सच है? हाँ दीदी, उस सुनैना रायचंद ने एक बार फिर से मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, कॉल करके बोला कि अभिमन्यु इस दुनिया में नहीं रहा है। आप बताइए, ये सुनने के बाद मैं खुद को कैसे रोक सकती थी? बस अभिमन्यु को देखने के लिए यहाँ पर आ गई। वो ठीक है लेकिन मुझसे बहुत नाराज है, अंजलि ने उसे सब कुछ बता दिया था।
तुम रो रही हो, तुम्हारी ममता तुम पर हावी हो रही है अंजलि, नैना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। उसे अच्छा लग रहा था कि देर से ही सही लेकिन अंजलि के दिल में अभिमन्यु के लिए कुछ तो जज्बात जागे। हाँ मैं रो रही हूँ क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। सुनैना का बेटा यहीं पर है दीदी, उसने मुझे खुलेआम धमकी दी है कि वो अभिमन्यु को बर्बाद कर देगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो सुन ही नहीं रहा। वो चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना जताए, नफरत कर ले, पर मैं उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। जब तक पार्थ यहाँ से नहीं चला जाता मैं अपनी आंखों से अभिमन्यु को दूर नहीं करूँगी, अंजलि ने खुद को सख्त करके जवाब दिया। उसे खुद भी होश नहीं था कि वो क्या कह रही थी। वहीं अंजलि की बात सुनकर नैना हैरान रह गई थी। उसने तुरंत अंजलि को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ बच्चा, लेकिन तुम जानती हो वो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारा खुद का बेटा तक तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे और ना ही तुम उनका बुरा बर्ताव झेल पाओगी। तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो अंजलि, फिर से उसी टॉर्चर को क्यों झेलना चाहती हो? पता नहीं दीदी, पर अब उसे अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। जब उसे पैदा किया था तब उसका चेहरा तक नहीं देखा था, डर लगता था कि अगर उसे देख लिया तो मेरे मन में ममता जग जाएगी और मैं उसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। बस यही वजह थी कि अब तक उससे दूर भागती रही। जब से पहली बार उसे देखा है तब से मेरा दिल यही करता है कि बस उसी को देखती जाऊँ, उसे अपने सीने से लगाऊँ और कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो, सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैंने तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी, अंजलि ने भावुक होकर जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे इमोशन अभी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश करना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर मत लगाओ, अपना ख्याल रखना बेटा, नैना ने चिंता जताते हुए कहा। अंजलि उम्र में उससे बहुत छोटी थी तो वो उसे बिल्कुल कियारा की तरह ही प्यार करती थी। अंजलि से बात करने के बाद नैना ने कॉल कट कर दिया। उसके पास में राघव और कियारा बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी बात तो नहीं सुनी थी लेकिन नैना की बातों से उन्हें कुछ समझ जरूर आ रहा था। नैना ने उन दोनों की तरफ रुख करते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मासी बहुत जिद्दी हैं, मैं कहती थी ना अंजलि अभिमन्यु से इस वजह से दूर रहती है ताकि उसकी ममता ना जग जाए। उसे अपनी चीज़ों से इतना लगाव है कि एक बार किसी चीज़ से प्यार हो जाए तो उसे हासिल करके रहती हैं। अब जब अपने बेटे के लिए प्यार जाग गया है तो उसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हैं? उसके बाद नैना ने उन्हें पार्थ के बारे में बताया कि कैसे पार्थ ने अंजलि को धमकी दी थी कि वो अभिमन्यु को बर्बाद कर देगा। पूरी बात सुनने के बाद कियारा ने जल्दी से कहा, अगर ऐसा है तो मैं अभी इशिका को बात करके उसे सब कुछ बता देती हूँ। नहीं, फिलहाल हम इस मामले में शांत रहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे आएंगे। अगर इतने सालों बाद अंजलि के दिल में अभिमन्यु के लिए प्यार जगा है तो उसका हक बनता है कि वो अपने बेटे के दिल में मौजूद नाराजगी को दूर करे। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, नैना ने जवाब दिया। वो खुश थी कि अंजलि इतने सालों बाद ही सही पर पहल कर रही थी। राघव और कियारा ने उनकी बात में हामी भरी। हालांकि उन्हें अभिमन्यु की परवाह हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पूरी तरह जीत पर अड़ गई थी। चाहे उसे कितनी भी बेइज्जती का सामना क्यों ना करना पड़े लेकिन वो अभिमन्यु को पार्थ नाम के खतरे से बचाकर रखने वाली थी। पता नहीं आपको अंजलि कैसी लगी पर फिलहाल जिस हिसाब से वो अभिमन्यु को प्रोटेक्ट कर रही है और उसके दिल में अचानक वाला प्यार जगा है, देखते हैं वो क्या रंग लाता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले भाग पर मिलते हैं।